दिल्ली, सहगल निवास। नाश्ता हो चुका था और कुछ देर में सब बस लड़की देखने निकलने वाले थे। अभिजीत जी के साथ उनकी पत्नी रूपाली जी, छोटा भाई, उनके पिताजी, एक दोस्त और उनका खुद का परिवार जा रहा था, जिनमें उनके दोनों बेटे, बेटी फलक, दामाद सुमित और समधी जी शामिल थे। सब लोग घर आ चुके थे, बस निकलने की तैयारी में थे। बाकी सब तैयार थे पर अक्षय अभी तक तैयार नहीं हुआ था। सुबह सुबह इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था और अभी ही लौटा था। नहा धोकर फ्रेश होकर वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसके बेड पर अन्वय के साथ उसकी छोटी बहन फलक बैठी मज़े से स्नैक्स खा रही थी। अक्षय ने दोनों को यहाँ डेरा जमाए देखा तो चिढ़ते हुए हाथ में मौजूद गीला तौलिया उनके ऊपर फेंकते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अन्वय ने तुरंत तौलिया कैच किया और चिढ़ते हुए बोला, क्या भाई, ये कोई जगह है गीला तौलिया फेंकने की? अक्षय के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। वो वापस उनकी ओर पलटा और उसी के लहजे में उल्टा उसी से सवाल किया, जगह तो ये तुम्हारी मंडली जमाने की भी नहीं, फिर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो दोनों? बस सोचा आपसे थोड़ी बातें कर ली जाएं, पर भैया आप हमें देखकर इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? अब की बार जवाब फलक ने दिया था और साथ ही सवाल भी पूछ लिया, जिस पर अक्षय ने खींचते हुए जवाब दिया, ये तो तुमने मेरे बेड का हाल किया है ना, दिल तो मारने को चाह रहा है। अक्षय का सख्त रवैया देखकर फलक ने तुरंत ही बात बदली, भैया हम तो यहाँ ये जानने आए थे कि आज सूरज कहाँ से निकला है। अक्षय ने भौहें चढ़ाते हुए असमंजस भरी नज़रों से उसे देखा। उसके मन के सवाल को समझते हुए फलक ने आगे बात जारी रखी, मेरा मतलब था कि इससे पहले कितनी ही बार हम यहीं दिल्ली में लड़की देखने गए थे, NCR में भी लड़की देखी, पर तब तो एक बार भी आप हमारे साथ नहीं गए थे और आज हमारे साथ कानपुर जाने को तैयार हो गए। कहीं लड़की कुछ ज़्यादा ही पसंद तो नहीं आ गई आपको, इसलिए खुद जा रहे हैं उसे देखने? इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। शरारती मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसने आंखें मटकाई। मतलब साफ था कि उसके यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अक्षय को छेड़ना। उसके इरादे समझते हुए अक्षय ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और खींचते हुए बोला, बकवास मत कर फलक, माँ ने कहा इसलिए जा रहा हूँ। माँ तो हर बार कहती है भाई, और अब तक आपके लिए 5 लड़कियों को देखने जा चुके हैं हम, पहले कभी तो आप हमारे साथ नहीं गए, इस बार आपको माँ का आज्ञाकारी बेटा बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया? कहीं माँ की आड़ में अपनी चाहत तो पूरी नहीं की जा रही? ये अन्वय महाराज थे जिन्होंने बहती गंगा में सिर्फ हाथ नहीं धोया था बल्कि पूरी डुबकी लगाकर निकले थे। शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए उसने भौहें चढ़ाई। अक्षय उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही फलक ने उसके पास आते हुए सवाल किया, वैसे भैया अगर आपको लड़की पसंद है तो हम उन्हें अपनी भाभी मान लें? फलक के इस सवाल पर अक्षय एक पल को उलझन में पड़ गया। जहन में उस लड़की की तस्वीर उभी जिसे देखकर कुछ अनकहे से एहसास उसके दिल में जागे थे। उन्हीं एहसासों में खोया था वो और उसे यों ख्यालों में गुम देखकर फलक और अन्वय दोनों की आंखें शरारत से चमक उठी थीं। जैसे जिस भेद पर से पर्दा उठाने वे यहाँ आए थे वो राज उनके सामने खुल चुका था। दोनों ने आंखों में शरारत भरते हुए और लबों पर शैतानी मुस्कान सजाए अर्थपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे हों। फिर अन्वय ने नाटकीय अंदाज में सोचते हुए सवाल किया, फलक नाम क्या है भाभी का? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा सा तो नाम है उनका। मुझे भी कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा, अभी तो बाहर मम्मी बता रही थी, मुझे तो नाम पसंद भी बहुत आया था पर अभी दिमाग में ही नहीं आ रहा। फलक भी उसके नाटक में शामिल हो गई और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी। इतने में अक्षय की सधी हुई आवाज़ वहां गूंज उठी, आहाना। दोनों की निगाहें अक्षय की ओर घूम गई जिसकी आंखों में कुछ अलग से जज्बात झलक रहे थे और लबों पर मंद मुस्कान सजी थी। अन्वय की शरारत की रग भड़की और अपने नाटक को उसके अंजाम तक पहुंचाते हुए उसने जरा हैरानी जाहिर की, ओ हाँ, आहाना नाम है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। इसके बाद उसने गहरी निगाहों से अक्षय को देखा, पर आपको बहुत अच्छे से याद था, क्या बात है भाई, कहीं दिल ही दिल में चाहने तो नहीं लगे अपनी आहाना को? अन्वय, मार खाएगा आज तू मुझसे। अक्षय ने अपने जज्बातों को गुस्से के पीछे छुपाया और उसे मुक्का दिखाते हुए उसे धमकाया। पर इससे पहले कि वो अन्वय पर हमला बोलता, फलक उन दोनों के बीच में आ गई और कमर पर हाथ रखकर गंभीर निगाहों से उसे देखने लगी, पर मुझे तो आप नहीं मार सकते, चलिए मुझे बताइए, सच में आपको ये लड़की, मतलब आहाना, पसंद आ गई है? अक्षय के चेहरे के सख्त भाव कुछ कोमल हो गए। उसने उलझन भरे लहजे में जवाब दिया, एक तस्वीर देखकर कैसे बता दूं कि पसंद आई या नहीं? किसी को पसंद या नापसंद करने के लिए मिलना जुलना पड़ता है, एक दूसरे को जानना और समझना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं। मतलब इस लड़की आपको अच्छी तो लग ही गई है, तभी मिलने जुलने और बातें करने के बारे में सोच रहे हैं आप, ठीक कहा ना भाई? अन्वय फिर मैदान में कूद पड़ा, पर अक्षय अब भी उलझन में था। पता नहीं, देखते हैं मिलकर, शायद पसंद आ जाए, या हो सकता है कि मुझे वो पसंद आ जाए पर वही मुझे नापसंद कर दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाई, फलक ने तपाक से उसकी बात पर विरोध जताया।
उसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था जैसे उसे अक्षय की बात पसंद नहीं आई, जबकि अक्षय ने सहजता से अपनी बात का समर्थन किया। बिल्कुल हो सकता है, क्या पता जैसे हमसफर की तलाश उसे हो, मैं वैसा ना हूँ, और होने को तो ये भी हो सकता है कि मम्मी पापा को ही लड़की पसंद ना आए, तो अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा भाई, एक बात बताइए, वैसे तो अहाना जी के बारे में सब जानकर और उनकी तस्वीर देखने के बाद मम्मी पापा ने देखने जाने के बारे में सोचा है, मतलब उन्हें वो अच्छी लगी, पर फिर भी अगर ऐसा हुआ कि लड़की को देखने और उससे मिलने के बाद मम्मी पापा ने उसे रिजेक्ट कर दिया पर आपको लड़की पसंद आ गई, तब आप क्या करेंगे? अन्वय भी उसके पास पहुंच गया और अपने मन में तूफान मचाते सवाल को उसके सामने रखकर जवाब का इंतजार करने लगा। इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ अन्वय को ही नहीं था, बल्कि फलक भी बड़ी ही उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। तो शादी नहीं होगी? अक्षय का जवाब सुनकर अन्वय और फलक एक दूसरे को देखने लगे। मतलब आप शादी से इनकार कर देंगे? अन्वय उसका जवाब सुनकर चौंक गया और आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। उसके सवाल के बदले अक्षय ने भौहें चढ़ाते हुए उसी से सवाल कर लिया, तो एक अनजान लड़की के लिए अपने मम्मी पापा के खिलाफ चला जाऊं? अगर आपकी जगह मैं होता तो 100% घर में बगावत होती, और मैं तो उसी से शादी करता जिसे मैं पसंद करता, फिर चाहे सबके खिलाफ जाकर ही क्यों ना करनी पड़ती, पर शादी तो उसी से होती। अन्वय ने बेफिक्री से जवाब दिया, जैसे ये उसके लिए कोई छोटी मोटी बात थी, पर मजाक नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में जज्बे नजर आ रहे थे, मतलब साफ था कि वक्त आने पर वो ऐसा करने से पीछे नहीं रहेगा। उसका जवाब सुनकर अक्षय ने बेहद संजीदगी से कहा, और शादी के बाद क्या होता? मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ शादी करता तो रोज घर में एक नई महाभारत छिड़ती, रिश्ते बिखर जाते, घर का माहौल बिगड़ता, परिवार के बीच दरार आती, मम्मी पापा की भावनाओं को ठेस पहुंचती, और साथ ही जिससे शादी करता उसकी जिंदगी भी मुश्किलों से भर जाती। अक्षय ने अपना नजरिया सामने रखा और वो भी स्पष्ट शब्दों में। अपनी जगह वो भी सही था, इसीलिए इस मामले में उससे आगे कोई बहस को न बढ़ाते हुए कुछ पल सोचने के बाद गंभीरता से कहा,
आप वाकई मम्मी पापा के फरमाबरदार बेटे हैं, वही कीजिएगा जो वे कहें, पर जरा ये बताइए कि घर में महाभारत तो तब भी होने के चांस है जब बहू उनकी पसंद की आएगी, तब क्या करेंगे आप? अपने मम्मी पापा के आज्ञाकारी बेटे बनकर उनका साथ देंगे या पतिधर्म निभाकर उसका समर्थन करेंगे जो आपसे शादी करके आपके भरोसे पर अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर यहाँ आपके घर आएगी, आपके परिवार को अपना परिवार मानेगी? अन्वय ने एक सवाल उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ अन्वय को ही नहीं था, बल्कि फलक भी बड़ी ही उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ये तो डिपेंड करता है, जो सही होगा उसका साथ दूंगा। अक्षय का जवाब सुनकर अन्वय और फलक एक दूसरे को देखने लगे। भैया, एक सलाह दूं आपको? अन्वय के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा गंभीर भाव देखकर अक्षय के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। कैसी सलाह? आप मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, पर अच्छे बेटे का फर्ज निभाते निभाते उस लड़की के साथ कोई नाइंसाफी मत कर जाइएगा। इतिहास गवाह है, सास बहू के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, और वजह भी जायज ही होती है। जिस माँ का अब तक अपने बेटे पर एकाधिकार था, उसे शादी के बाद उसे बांटना पड़ता है, जिससे उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आने लगती है कि कहीं उनकी बहू उनके बेटे को उनसे छीन न ले, और इसी डर में वो बहू पर अत्याचार करती हैं, और ऐसी स्थिति में उस लड़के को दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम 100% होने वाली है, तो अभी से खुद को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर लीजिए। अक्षय, जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, उसने अफसोस से सर हिलाया और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, ये सास बहू वाले डेली सोप्स थोड़ा कम देखा कर तू। अन्वय ने अपना सर सहलाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। इधर फलक, जो काफी देर से कुछ सोच रही थी, मौका पाकर उसने अपनी बात रखने की कोशिश की। भैया, मैं कुछ कहूँ? अक्षय ने नजर घुमाकर उसे देखा और जरा चिढ़ते हुए बोला, अब भी कुछ कहना रह गया है तो तू भी बोल ले। भैया, जो मम्मा'स बॉयज होते हैं ना, उनकी वाइफ को अपने ससुराल में एडजस्ट होने में बड़ी परेशानी होती है। मैं ये नहीं कहती कि शादी के बाद जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर दी, उन्हें पूरी तरह भुला देना चाहिए, उनके प्रति अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए, पर आंखें मूंद कर हर बात में उनका समर्थन भी नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर उसके परिवार और माता पिता के प्रति उसके कुछ फर्ज हैं, तो उस लड़की के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जिसे वो शादी करके अपने घर लाया है। उस लड़के के पास तो उसका पूरा परिवार होता है, पर वो लड़की अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर उसका हाथ थामकर सिर्फ उस पर विश्वास करके एक अनजान जगह अजनबियों के बीच आती है, तो उस नए घर में उसे सम्मान दिलाना उस लड़के की सबसे पहली जिम्मेदारी है। जो लड़की उसके भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर उसकी दुनिया में शामिल हुई है, उसका ख्याल रखना भी उसका ही फर्ज है। उसे ये एहसास दिलाना कि वो भी उस परिवार की सदस्य है, उसके लिए अहम है, ये उस लड़के की अहम जिम्मेदारी है।
मैंने सुना था कि ससुराल में लड़की की इज्जत उसके पति से ही होती है, और शादी के बाद देख भी लिया कि वाकई अगर ससुराल में पति आपके समर्थन में है, आपकी इज्जत करता है, आपके मान सम्मान को बनाए रखता है, आपका ख्याल रखता है, तभी ससुराल वाले भी आपकी इज्जत करते हैं। जिस लड़की को उसका पति ही गलत ठहरा दे, घर वालों से लेकर बाहर वालों तक सबकी उंगलियां फिर उस पर ही उठती हैं, चाहे वाकई में वो गलत हो या ना हो, पर झुकना और दबना, ताने सुनना उसे ही पड़ता है। और तुझे लगता है कि जो लड़की मेरी पत्नी बनकर इस घर में आएगी, मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा, उसका साथ नहीं दूंगा? अक्षय ने उसकी पूरी बात गंभीरता से सुनने के बाद सवाल किया। फलक ने तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। ऐसा नहीं है भैया, पर जैसे आप मम्मी की हर बात मानते हैं, मुझे कभी कभी डर लगता है कि एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाने में कहीं आप अपनी पत्नी के साथ कोई नाइंसाफी न कर दें। आप तो मम्मी से अपने लिए भी जल्दी से कुछ नहीं कहते, अगर उनके लिए भी स्टैंड नहीं ले सके तो? मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, वरना अगर मम्मी कुछ गलत करेंगी तो मैं उन्हें जरूर रोकूंगा। मेरी शादी करने से तो नहीं रोका आपने उन्हें? फलक के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकला, जिसने अक्षय तो झकझोर कर रख दिया। फलक, अक्षय ने कुछ कहना चाहा, पर फलक ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसकी बात काटते हुए बोली, भैया मैं आपकी बहन हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ससुराल चाहे जैसा हो पर सुमित बहुत अच्छे हैं। पर अब आप शादी करने जा रहे हैं तो जो लड़की आपकी पत्नी बनकर इस घर में आए उसके साथ कुछ गलत मत होने दीजिएगा। अक्षय कुछ पल खामोशी से अपनी बहन को देखता रहा, जिसके बड़े भाई का फर्ज निभाने में चूक गया था वो, पर फिर भी उसकी बहन उससे शिकायत नहीं करती। तू इतनी समझदारी वाली बातें कब से करने लगी? अक्षय ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए सवाल किया, जिस पर फलक फीका सा मुस्कुरा दी। जब से मेरी शादी उस घर में करवा दी है, जहां मुझे हर रोज एक नई जंग लड़नी पड़ती है। मेरी भाभी को ऐसी जिंदगी मत दीजिएगा भैया, एक इल्तिजा थी उसने अपने भाई से, उसे अक्षय ने सर झुकाकर स्वीकार किया और फिर उसे अपने सीने से रगा लिया।